इस हफ्ते माइंड विद मसल पॉडकास्ट में क्वेश्चंस ऑफ द वीक, टाइम टू टाइम रेप रेंज चेंज अगर ना की जाए तो क्या रिजल्ट्स नहीं मिलते, रियर डेल्ट्स को किस तरह से ग्रो किया जाए, पुलअप्स या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, क्रिएटिनिन एंड हाई प्रोटीन डाइट का क्या रिलेशनशिप है, एक्सरसाइज करते टाइम आप करेक्ट टेम्पो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो ज्यादा रिजल्ट्स के लिए, मॉडर्न जिम्स या फिर ओल्ड स्कूल जिम्स दोनों में से बढ़िया कौन से हैं, टू मच इजैक्युलेशन का मसल गेन के ऊपर किस तरह का असर है, रिवर्स डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म रिपेयर करने का क्या बेनिफिट है, ऑल दिस एंड मच मोर इन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ द माइंड विद मसल पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल पॉडकास्ट। मेरा नाम है नव जो सिंह और आज क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जहां पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बिल्कुल पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ड्रिल्स की आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके खानों तक पहुंचे, लेकिन बिल्कुल अवॉइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन क्वेश्चंस आपके ज़रूर आंसर किए जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन भेजा है IM_Akash, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। पूछते हैं, टाइम टू टाइम रेप रेंज अगर चेंज ना किया जाए तो क्या रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? सर, इसका जवाब है कि रिजल्ट्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलने कम होते जाते हैं, एंड एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपको रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस क्यों लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्यों वो लोग प्लेटो हिट कर जाते हैं, क्योंकि जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 से लेकर 12 रेप रेंज में अगर हम काम करेंगे तो इससे हमारे मसल बिल्ड होते हैं। ये जानकारी है तो सही, लेकिन अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी ये है कि 8 से लेकर 12 रेप रेंज में अगर आप काम करोगे तो आपके मसल बिल्डिंग ज़रूर होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता रहेगा। आपको प्लेटो कभी ना कभी आप ज़रूर हिट करोगे। उसको अवॉइड करने के लिए कि आप प्लेटो ना हिट करें, आपको टाइम टू टाइम अपनी रेप रेंज चेंज करनी चाहिए। इसके दो तरीके हैं वैसे, जो मुझे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, जो ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में पहले बात करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर डिफरेंट रेप रेंजेस में काम करने से बेनिफिट होता है तो सभी रेप रेंजेस की खिचड़ी सी बना के एक साथ उसका वर्कआउट किया जाए। मतलब दो मान लो एक्सरसाइज आपने बहुत ज़्यादा हैवी लगाई तो आप अराउंड 4-5 रेप्स निकाल रहे हो उन एक्सरसाइज में, उसी वर्कआउट में 2-3 एक्सरसाइज आप ऐसी लगा रहे हो जिसमें आप 8 से 12 रेप रेंज में रह रहे हो, और उसी वर्कआउट में लास्ट में जाके आप कोई हल्की सी आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हो जिसमें आप 15 या 15 से ज़्यादा रेप्स निकाल रहे हो, तो आपको लगता है कि आप सभी तरह की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, ट्रेनिंग नीड्स हैं, उसको पूरा कर रहे हो। मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, उसकी दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि किसी भी तरह के स्टिमुलस के प्रति आपकी बॉडी अडेप्ट हो, रिएक्ट करे, उसके लिए उसको एक सर्टन टाइम चाहिए होता है। उसको क्लियरली आपकी बॉडी को सिग्नल जाना चाहिए कि हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस तरह की अडेप्टेशन के लिए कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप दो सिर्फ सेट्स लगा रहे हो हैवी, उसके बाद आप लाइट प्रैक्टिस कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है आपकी बॉडी के लिए। जिस भी तरह से आप वर्कआउट करते हो, आप समझो कि ये आपकी बॉडी के लिए सिर्फ एक सिग्नल की तरह काम करता है, और उस सिग्नल के प्रति हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, अडेप्ट होती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप हैवी ट्रेनिंग करना चाहते हो तो अगर कुछ टाइम दोगे उस चीज़ को तो हैवी सिर्फ करो, उसके बाद अगर आप हाइपरट्रॉफी फेज में रहते हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, ताकि आपकी बॉडी को क्लियर एक सिग्नल जाए, क्लियर मैसेज मिले कि हम इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं और इस तरह से हम रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग से। तो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, किस तरह से अडेप्ट होगी। और दूसरा जो बेनिफिट मुझे इस अप्रोच का लगता है कि आपको ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। कि सपोज़ करो कि आप हैवी लगा रहे हो तो पिछले हफ्ते सपोज़ आपने स्क्वाट में कोई एक सर्टन वॉल्यूम पे काम किया था, तो नेक्स्ट वीक में जब आप स्क्वाट लगाओगे तो आपके पास एक क्लियर नंबर होगा कि मुझे ये वाला नंबर हिट करना है अगर मैं अपनी प्रीवियस वर्कआउट वॉल्यूम को मैच करना चाहता हूँ, उसको एक्सीड करना चाहता हूँ, मैच करना चाहता हूँ, या फिर किसी वजह से आप अगर डाउन भी रहेंगे तो भी नंबर्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होंगे। इसके उल्टा अगर आप खिचड़ी बना दोगे, कुछ आपने सेट्स लगाए हैं हैवी, कुछ आपने लगाए हैं लाइट, तो आपको उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये दो रीजंस हैं, पहला कि हम मुझे लगता है कि आपकी बॉडी अडेप्ट करे, रिएक्ट करे, उसके लिए उसको एक सर्टन टाइम चाहिए होता है, एंड दूसरा ट्रैक करना इजियर होता है। इसलिए ये दो चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी जो रेप रेंज है उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनेमा27, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी पूछते हैं, सर हाउ टू ग्रो रियर डेल्टॉइड्स? सर, रियर डेल्टॉइड्स को ग्रो करने के लिए रियर डेल्टॉइड्स की एक्सरसाइज कीजिए। ये जवाब आपको बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लगेगा, लेकिन जवाब यही है। अगर आपको लगता है कि आपके एक्सरसाइज करने के बावजूद भी रियर डेल्टॉइड्स आपके उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ट्रिक है और वो ट्रिक है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रियर डेल्टॉइड्स को हिट करो। हफ्ते में कम से कम 3 बार आप रियर डेल्टॉइड्स को ज़रूर हिट कीजिए। अगर तो आपका शेड्यूल जो नॉर्मल वर्कआउट रूटीन है वो इस तरह का है कि आप एक दिन हफ्ते में बहुत हार्ड तरीके के साथ रियर डेल्टॉइड्स को हिट करते हो, तो 2 दिन आप उसको लाइट तरीके के साथ, जैसे हम सिर्फ वार्म अप करते हैं, 2-3 सेट्स आप रियर केबल फ्लाई के लगा सकते हो या फिर जो रियर डंबल रेजेज होते हैं वो, ये 2 एक्सरसाइजेज आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही लाइट इंटेंसिटी के साथ आपने काम करना है। ये काम इस तरह से आप तब करोगे अगर हफ्ते में एक बार जब आप रियर डेल्टॉइड्स को हिट करते हो तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ करते हो। अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप 3 ही बार मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ अगर आप हिट करोगे रियर डेल्टॉइड्स से तो भी आपको सिमिलर इफेक्ट मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हिट करना है अपने डेल्टॉइड्स को, और इंटेंसिटी को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयस अंडरस्कोर द क्वाड गाय ये पूछते हैं, हाउ टू इम्प्रूव पुलअप्स एंड बॉडी वेट एक्सरसाइज। बहुत ईजी उसका तरीका है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको पुलअप्स जिनसे नहीं लगते हैं, और जिनसे नहीं लगते उनको लगता है कि शायद बहुत ही हार्ड तरीका है, हम पुलअप्स में कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही एक इजी टिप मैं आपको दूंगा जो कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी दी हुई है, मुझे लगता है कि आपने वो वीडियोस देखी नहीं है। अगर आपके घर में कोई लटकने वाली चीज़ है, चाहे वो कोई दरवाज़ा है चाहे कोई भी चीज़ है, अगर पुलअप बार है तो सबसे बढ़िया चीज़ है। करना क्या है आपने कि जब भी आपको याद आए, दिन में आप घर में रह रहे हो, जब भी आपको याद आए तो आपने सिर्फ एक पुलअप उसमें निकालने की कोशिश करनी है, उस बार पे या उस दरवाजे पे, किसी भी जगह पे जो भी आपके पास अवेलेबल है। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पुलअप निकाल पाएं, 2 निकाल पाएं 3 निकाल पाएं, लेकिन 2, 3, 4 नहीं निकालने हैं। आप कितने भी पुलअप्स निकाल सकते हो लेकिन निकालने आपने एक ही है, ठीक है। सिर्फ ये आपने बात दिमाग में रखनी है। फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दिन में आपको 4 बार याद आए, 5 बार याद आए, 6 बार याद आए, जितनी बार भी याद आए आपने सिर्फ एक पुलअप निकालना है। अगर आप इस तरह सिर्फ 1 महीना करोगे तो 1 महीने के बाद मुझे बताना, कहीं पे कमेंट कर देना, कहीं पे मुझे मैसेज कर देना कि आप अपने मेन वर्कआउट्स में जब पुलअप्स निकालते हो तो उसमें कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और यही अप्रोच किसी भी बॉडी वेट एक्सरसाइज के लिए है। अगर आप पुशअप में अच्छा होना चाहते हो, आप डिप्स में अच्छा होना चाहते हो, किसी भी बॉडी वेट एक्सरसाइज में आप अच्छा होना चाहते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करो। दिन में आपको 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार याद आए, जब भी आपको याद आए सिर्फ 1 रैप आपने निकालना है। अगर आपसे 1 भी नहीं निकलता है तो कोशिश करो कि आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो। आप 5-6 बार 7 बार 8 बार मत करो, आप 2-3 बार करो, लेकिन 1 निकालने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा निकलते हैं पुलअप्स या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखो लेकिन निकालो रैप, निकालो सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट आशीष ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी पूछते हैं, अगर प्रोटीन इनटेक कम हो फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई एम लोडिंग कार्बोहाइड्रेट्स सो मसल लॉस ना हो, इज इट अ राइट अप्रोच? नहीं सर, इट इज ए रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि आपका मसल लॉस ना हो, मसल बिल्ड हो या फिर प्रिजर्व हो, उसके लिए 2 बड़ी चीज़ें आपके बॉडी के लिए सिग्नल की तरह काम करती हैं, और वो चीज़ें हैं 2, एक तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड नंबर 2 है प्रोटीन इनटेक। अगर आपका प्रोटीन इनटेक हाई रहेगा तो इससे आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि आपके मसल को वो बचाए रखे। कार्ब्स जो हैं वो प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इनफैक्ट स्टडीज़ में भी ये बात देखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इनटेक हाई करने से जो सब्जेक्ट्स हैं वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इनटेक हाई रखने से सब्जेक्ट्स का मसल मास प्रिजर्व हुआ, इन सम केसेस मसल मास थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुआ। तो प्रोटीन इनटेक बहुत बड़ा सिग्नल होता है आपकी बॉडी के लिए कि वो आपके मसल्स को बचाए रखे। क्योंकि समझो ना इस बात को, मसल्स हैं क्या? मसल्स प्रोटीन ही है, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मसल्स के, अगर वो आपकी बॉडी के पास मौजूद हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका मसल लॉस होगा। लेकिन इसके उल्टा अगर आप प्रोटीन की जगह पे कार्ब्स को सब्स्टिट्यूट करते हो, कार्ब्स की इनटेक इंक्रीज करते हो, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपके फैट टिश्यू में कन्वर्ट होंगे और आप साइज में शायद बड़े दिखेंगे लेकिन वो साइज जो है वो फैट से आएगा, मसल से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन bench.deadlift.squat ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं क्रिएटिनिन एंड हाई प्रोटीन डाइट रिलेशनशिप। सो क्रिएटिनिन, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको किडनी डिजीज हो या फिर किडनी की हेल्थ अगर किसी ने चेक करनी है आपके डॉक्टर ने, तो बहुत सारे टेस्ट में से क्रिएटिनिन भी एक टेस्ट होता है। सो है क्या ये चीज़ क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको के किडनीज ब्लड में से फिल्टर करके आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालती हैं। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा आ रही है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद आपकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है या फिर किडनी डिजीज की ये एक इंडिकेटर हो सकता है। हाई प्रोटीन डाइट के साथ क्रिएटिनिन का रिलेशनशिप है, और वो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट खाते हो तो हो सकता है कुछ केसेस में आपका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो हो सकता है कि क्रिएटिनिन ज़्यादा आए, और उसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट जो क्रिएटिनिन है वो ज़्यादा बनता है। अगर आप ज़्यादा मस्कुलर हो तो भी आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा आएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करते हो तो भी आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इन रीजंस की वजह से आपके क्रिएटिनिन का ज़्यादा आना और किडनी डिजीज़ की वजह से आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा आना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनिशियली अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा आ रहा है तो आपके डॉक्टर को लग सकता है कि शायद आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएटिनिन का ज़्यादा आना ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगेगा तो वो फर्दर टेस्ट होते हैं, GFR टेस्ट होता है और भी टेस्ट होते हैं, वो और टेस्ट करके आपके किडनीज की फिल्ट्रेशन रेट और ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं, तब उनको क्लियर हो जाता है कि जो रीज़न है क्रिएटिनिन ज़्यादा आने का वो एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिहर 1890, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी पूछते हैं, सर एनी एडवाइस ऑन हाउ वन शुड प्ले विद टेम्पो इन करेक्ट वे बिकॉज आई सी मैनी अब्यूजिंग इट नाउअडेज। ओके, सो ये एक्सरसाइज में जो टेम्पो होता है, टेम्पो का मतलब होता है किस स्पीड से आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप बेंच प्रेस लगा रहे हो और एक सेकेंड आप लगा रहे हो बार को ऊपर लेके जाने में, एक सेकेंड लगा रहे हो आप नीचे लेके आने में, तो दो सेकेंड की स्पीड ये आपका टेम्पो है। इसके उल्टा अगर आप दो सेकेंड लगा रहे हो बार को ऊपर लेके जाने में, फिर वहां पे होल्ड करके रख रहे हो, दो तीन सेकेंड नीचे लेके आने में आप तीन चार सेकेंड्स लगा रहे हो, तो आपका टेम्पो स्लो हो जाएगा, एक्सरसाइज करने का टेम्पो स्लो हो जाएगा। स्टडीज में ये देखा गया कि अगर आप थोड़ा सा स्लोअर टेम्पो से आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो टाइम अंडर टेंशन है, मसल का टाइम अंडर टेंशन, वो इंक्रीज होता है और आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पेशली जो इसेंट्रिक पार्ट ऑफ द मोशन होता है, इसेंट्रिक पार्ट होता है एक्सरसाइज का, उसमें अगर आप स्लोअर आते हो नीचे तो आपको ज़्यादा हाइपरट्रॉफी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब आप सोचोगे अगर आपने इस टेम्पो के साथ एक्सरसाइज करनी है तो दो सेकेंड आपको लगेंगे ऊपर लेके जाने में बार को, दो सेकेंड आप स्क्वीज करोगे मसल को एंड चार सेकेंड आप लगाओगे नीचे आने में, तो आठ सेकेंड में आपका एक रैप परफॉर्म होगा। इस स्पीड के ऊपर आपने अपने जिम में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी को भी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन यस, अगर आपको अच्छा वर्कआउट करने के बावजूद भी आप सोचते हो कि आपने अच्छा वर्कआउट किया है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, तो आप अपने टेम्पो के साथ थोड़ा सा प्ले कीजिए, थोड़ा सा उसको स्लो करने की कोशिश करिए, स्पेशली इन इसेंट्रिक पार्ट ऑफ द मूवमेंट, आपको जरूर उससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साहा रोहित 00002222, बड़ी लंबी सी इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं कैन आई गो फॉर मॉडर्न हाइफाई जिम और आई गो फॉर ओल्ड टाइप जिम। ओके सर, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने फ्रांस में रह के पेरिस के बढ़िया से जिम्स में भी प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे ट्रेनर्स के साथ, और मैंने अपने गांव में जो बेसिक जिम होता है जहां पे इक्विपमेंट भी पूरा नहीं है वहां पे भी प्रैक्टिस की है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि नंबर वन आपको गाइडेंस किस तरह की है, किस तरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो चेंज नहीं होगी चाहे आप कहीं पर भी जाके वर्कआउट करो। आपके मसल्स को पता नहीं चलेगा कि जो बेंच प्रेस आप लगा रहे हो वो घर में लगा रहे हो या किसी जिम में लगा रहे हो या फिर किसी बहुत हाईफाई जिम में लगा रहे हो, तो एक्सरसाइज तो चेंज नहीं होंगी। ऐसा हो सकता है कि इक्विपमेंट जो है वहां पे जो हाईफाई होते हैं वहां पे थोड़ा सा बेटर आपको मिले, लेकिन हर इक्विपमेंट का सब्स्टिट्यूट बहुत इजीली अवेलेबल होता है जो छोटे जिम में होते हैं वहां पे भी। तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितने अच्छे से वर्कआउट करते हो, इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे कि आप किस जिम में प्रैक्टिस कर रहे हो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन insta_wolf.22, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी पूछते हैं, टू मच इजैक्युलेशन इफेक्ट्स ऑन मसल गेन। तो इजैक्युलेशन मतलब कि शायद ये सेक्स ज्यादा करते हैं या फिर मैस्टर्बेशन ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से इनका इजैक्युलेशन ज्यादा होता है, या नाइटफॉल होता है, कुछ भी किसी भी वजह से इजैक्युलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो मसल के ऊपर, मसल गेनिंग प्रोसेस के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसके बारे में पूछते हैं। मसल गेनिंग इफेक्ट आप ज़रूर सोच रहे होगे कि मसल गेनिंग पे इसका नेगेटिव असर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी स्टडी रिसर्च नहीं है जो कि इस बात को प्रूव करती हो कि आपके इजैक्युलेशन से आपके मसल बिल्डिंग एबिलिटी के ऊपर कुछ नेगेटिव असर आता है। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर मेरा इजैक्युलेशन हो गया किसी भी वजह से, नाइटफॉल हो गया या कुछ हो गया, तो अगले दिन शायद आपका मन ना हो, आपको वहम हो जाए कि यार मैं पता नहीं अपना 100% दे पाऊंगा कि नहीं, अपने वर्कआउट्स में अच्छे से वर्कआउट कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो इफेक्ट है आपके दिमाग के ऊपर और उसकी वजह से अगर आपका वर्कआउट नेगेटिवली अफेक्ट होता है तो उस वजह से हो सकता है कि आपके मसल गेनिंग के ऊपर नेगेटिव असर हो, लेकिन इजैक्युलेशन की वजह से आपके मसल गेनिंग एबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वहमों से बाहर निकलो, इससे आगे और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने फेस करनी है और जिनका आपने सॉल्यूशन ढूंढना है। ये जो आप मास्टरबेशन से रिलेटेड, नाइटफॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी लगती हैं, ये आपको एक टाइम पे बेमायने से प्रॉब्लम्स लगेंगी, तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश_बचानी, ये इनका इंस्टाग्राम आईडी है, पूछते हैं हाउ कैन वी यूज रिवर्स डाइटिंग फॉर मेटाबॉलिज्म रिपेयर एंड बेनिफिट ऑफ इट. अच्छा, रिवर्स डाइटिंग, सर रिवर्स डाइटिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ साबित हो सकती है अगर आपको नहीं पता है कि ये काम कैसे किया जाता है. रिवर्स डाइटिंग एक्चुअली तब की जाती है अगर आपने बहुत लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट में आप रहे हो बहुत लंबे समय तक, और इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी की ख़राब एडवाइस के चलते कोई 1000-1200 की डाइट बहुत लंबे समय तक फॉलो की है, तो इससे आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर इस तरह का असर आता है कि धीरे धीरे करके ना आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है. तो अगर आप इस तरह के मेटाबॉलिज्म पे, जिस भी वेट पे हो, जिस भी तरह की आपकी बॉडी है, अगर वही रखना चाहते हो, मतलब कि आपने वजन तो डाउन अपना कर लिया, आपका फैट लॉस, आप वेट लॉस जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर चुके हो, लेकिन आप अगर वैसे ही दिखना चाहते हो, तो आपको हमेशा के लिए वही 1000-1200 कैलोरीज वाली डाइट ही खानी पड़ेगी, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. वो जैसे ही थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं अपने खाने को, तो उनका वजन दोगुनी स्पीड से वापस आना शुरू हो जाता है. और उसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जब आप फास्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, सपोज करो कि 200 कैलोरीज खाते हो, 200 कैलोरीज बढ़ाते हो, उसका असर बिल्कुल अलग है. अगर आप बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म के ऊपर 200 कैलोरीज बढ़ाते हो, तो उसका असर बिल्कुल ही अलग होता है. स्लो मेटाबॉलिज्म के ऊपर हो सकता है कि थोड़ी सी भी ज्यादा सरप्लस कैलोरीज का असर आपको फैट गेन के रूप में देखने को मिले, लेकिन फास्ट मेटाबॉलिज्म में ये चीज आप नहीं देखोगे. तो इस खराब सिचुएशन को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो, तो इसका एक ही उपाय है कि आप रिवर्स डाइटिंग करते हो और आप साथ में अच्छी बढ़िया प्रोग्राम्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो. डाइटिंग आप किस तरह से करते हो कि इस पॉइंट पे आके ना जो अंदाजे होते हैं कि मैं अंदाजन इतना बढ़ा लूँ, ये काम पीछे रह जाते हैं. आपको प्रिसाइसली काउंट करनी पड़ेगी अपनी कैलोरीज और प्रिसाइसली बहुत स्मॉल सरप्लस आपको क्रिएट करना पड़ेगा. अंदाजन 8 से लेके 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज आपको इंक्रीज करनी पड़ेंगी. अब लेट्स से कि आपने 1200 कैलोरीज की डाइट के ऊपर आप बहुत लंबे समय तक रहे हो, तो अगर आपने इसमें सरप्लस क्रिएट करना है, तो 1200 कैलोरीज का मैक्सिमम जो सरप्लस बनेगा आपका, वो बनेगा 120 कैलोरीज, जो कि बहुत ही छोटी अमाउंट है. इसको आप दो दो तीन तीन हफ्ते के इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा 8-8, 10-10% इंक्रीज करते हो. साथ ही साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो और आप देखते हो कि आपकी बॉडी फैट जो कॉम्पोजिशन है आपकी बॉडी की, वो किस तरह से चेंज हो रही है. अगर आपको फैट आता हुआ वापस से दिखाई दे, तो आप इस प्रोसेस को और स्लो करते हो. और अगर आपका काम सही चल रहा है, अगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है, तो आप इस प्रोसेस को जारी रखते हो. सारी इस कहानी का सार ये है कि स्लो जो शब्द है ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए. जितना स्लो ये काम करोगे, जितना स्लो कैलोरीज इंक्रीज करोगे और जितना टाइम ज़्यादा लोगे आप वापस से एक अच्छे कैलोरिक पॉइंट पे आने के लिए, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी और आपकी बॉडी कंपोजिशन के लिए भी. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीक. अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेस. इंस्टाग्राम पे जाके माइंड विद मसल सर्च कीजिए, आप मुझे ढूंढ लोगे. वहां पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो. अगर आप ये पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो, तो 5-star रिव्यू देके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी कर सकते हो. फ्री वर्कआउट प्रोग्राम्स, लॉट्स ऑफ डाइट वर्कआउट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग. यू बीन लिसनिंग टू द माइंड विद मसल पॉडकास्ट.